समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। Mukesh, it was Buddha Purnima yesterday, and this year it was an even special one as for the first time the sacred relics of Gautam Buddha, which are usually housed at the National Museum in here in Delhi, has been brought to Ladakh for public viewing. And in the land of high passes in Ladakh, where the mountains seem to touch you and are quieter than the rest of the country, the sacred exposition of the holy relics of Gautam Buddha has brought with it a different kind of stillness, offering a rare opportunity for pilgrims, monks and locals to pay homage. The event has been described as a major, deeply spiritual occasion for the region's people to connect with the teachings of Lord Buddha. Devotees and tourists can in this season now pay their respects, and this will certainly spiritually be an enriching experience for all the visitors. So why not make a plan to visit Ladakh this season, Mukesh? Escaping the sweltering heat of the cities down here. है ना? तो ये सब तो हुई information वाली बातें, and shall we begin with the news headlines now?
बिल्कुल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार।
Re-polling underway at 15 booths of two assembly constituencies of West Bengal. Over 55% voter turnout reported till 1 p.m.
लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया।
इंडिया एंड नेपाल डिस्कस फ्लड फोरकास्टिंग मॉडल अहेड ऑफ द अपकमिंग मॉनसून सीजन।
मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान।
एंड इन आईपीएल क्रिकेट, चेन्नई सुपर किंग्स टू टेक ऑन मुंबई इंडियंस दिस इवनिंग। And now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And Mukesh, today we will talk about World Tuna Day. Today's broadcast marks a globally significant occasion. It's May the 2nd, celebrated worldwide as World Tuna Day. It serves as a call to action to protect tuna populations, with 33.3% of the 7 main tuna species previously fished at sustainable levels. Now, you might be wondering, why tuna? So, of all the species in the ocean, why dedicate an entire international day to this one fish? Stay with us as we dive deep into the story of tuna, its journey in the ocean, its incredible nutritional value, the environmental challenges it faces, and the inspiring global efforts working to secure its future. So, tuna are among the ocean's most remarkable creatures. Built for speed and endurance, these powerful fish can swim across entire oceans, maintaining warm body temperatures even in cold waters, a rare trait among fish. There are several species of tuna, including skipjack, yellowfin, albacore, and the prized bluefin. Each plays a vital role in marine ecosystems and global fisheries. Tuna is not just a fish, it's a global commodity, a cultural staple, and for many communities, it's a lifeline.
बिल्कुल, tuna एक मुख्य भोजन भी है और आपकी प्लेट पर जब tuna पोषक तत्वों का खजाना होती है, तो आइए इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। आइए इसे आपके घर, आपकी रसोई के और करीब लाते हैं। चाहे वो कोई झटपट बनाने वाला सैंडविच हो, सलाद हो या किसी खाने का हिस्सा हो, ट्यूना दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मछलियों में से एक है और ये सिर्फ बनाने में आसान नहीं है बल्कि ये बेहद पौष्टिक भी है। और यहां बताया गया है कि पोषण विशेषज्ञ अक्सर ट्यूना खाने की सलाह क्यों देते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। ये सेहतमंद फैट सूजन कम करने, दिल की सेहत को बेहतर बनाने और यहां तक कि दिमाग के काम करने की क्षमता को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा बेहतर क्वालिटी का प्रोटीन इसके अंदर होता है। ट्यूना सभी जरूरी अमीनो एसिड देता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और उनके विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा विटामिन डी B12 का ये खजाना है। ये ऊर्जा बनाने और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है और साथ ही खनिजों से ये भरपूर है। इसमें सेलेनियम भी शामिल है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और आयोडीन भी है जो थायराइड की सेहत के लिए बहुत जरूरी है।
And for people seeking affordable, high-protein diets, canned tuna has become a reliable and accessible option worldwide. But as demand grew, so did the pressure on tuna populations. And a few decades ago, the popularity of tuna came at a cost. With rising global demand, fishing fleets expanded rapidly. And in many parts of the world, weak regulations and fragmented management led to its overfishing. Some tuna stocks began to decline at alarming rates. By 2017, only about 75% of tuna catches came from sustainable, healthy stocks, and the rest were under serious pressure. The situation raised urgent questions. Could tuna disappear from our oceans? Could the entire fishing communities lose their livelihoods?
लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। यहीं से कहानी में एक सकारात्मक मोड़ आता है। जब संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ट्यूना दिवस की शुरुआत की थी तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था बल्कि एक कार्रवाई के लिए एक पुकार थी। सरकारें, वैज्ञानिक और मछुआरे सभी पहले कभी ना देखे गए अंदाज में एक साथ आए। खाद्य और कृषि संगठन जैसे संगठनों ने अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों के बीच तालमेल बनाया। ट्यूना मछली के प्रबंधन से जुड़े 5 प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों ने अपनी रणनीतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ा।
Now let us now talk about a global turnaround story. The results of these measures, which were like, today an estimated 99% of commercial tuna catches come from stocks that are scientifically assessed as sustainable. And out of 23 global tuna stocks, only 2 remain overfished. Even more inspiring is that species like Atlantic bluefin tuna, once nearly absent, are now returning to waters off southern England and Ireland. This is one of the rare environmental success stories where global cooperation truly worked.
तो आइए अब बात करते हैं कि सस्टेनेबल फिशिंग कैसे काम करती है। तो हमने हालात को ठीक कैसे किया है, आइए उन मुख्य तरीकों को समझते हैं और आज सस्टेनेबल ट्यूना फिशिंग को आकार दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के तरीके की। ये पहले से तय किए गए नियम होते हैं जो ये तय करते हैं कि कितनी फिशिंग की जा सकती है। फिशिंग का सीजन शुरू होने से पहले वैज्ञानिक पॉलिसी बनाते हैं और मछुआरे मिलकर काम करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि फैसले डेटा पर आधारित हों, ना कि अचानक लिए गए हों। इसके अलावा मॉनिटरिंग, कंट्रोल और निगरानी भी इसमें काम करती है। आजकल की फिशरीज में नियमों का पालन पक्का करने के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग, नाव पर मौजूद ऑब्जर्वर और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब गैर कानूनी फिशिंग को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया है।
Right, some there are some more practices, and these include the further mentioned measures like reducing bycatch. And now, what is bycatch? When unintended species like turtles, sharks, seabirds, and whales get caught, it has long been a major issue. Innovations also include like circle hooks that reduce turtle capture, bird scaring lines to protect seabirds like albatrosses, modified nets that allow non-target species to escape. And of course, there are eco-friendly practices also. Fishing gear and techniques are being redesigned to minimize damage to marine habitats and ecosystems.
जी हाँ, सस्टेनेबिलिटी सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, ये ज्ञान के बारे में भी है। खाद्य और कृषि संगठन का कॉमन ओशंस ट्यूना प्रोजेक्ट इन चीजों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। दुनिया भर में मछली पकड़ने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा सस्टेनेबल तरीकों पर ई लर्निंग कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने के तरीकों को बेहतर बनाया जा रहा है और ट्रेसिबिलिटी सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि उनकी ट्यूना मछली कहां से आई है। इसका लक्ष्य क्या है, 2027 तक दुनिया भर में सस्टेनेबल तरीके से ट्यूना मछली पकड़ना।
Despite all these progress, new challenges are also emerging, like climate change. Warming oceans are altering tuna migration patterns. Fish are moving farther offshore, increasing the cost for fishers and threatening coastal livelihoods, especially in developing regions. And then there are threats to marine wildlife. Many species, particularly seabirds like albatrosses, remain at risk due to accidental capture. And if we talk about the global governance, a major milestone came with the BBNJ agreement, which entered into force in 2026. And this agreement strengthens protection for marine biodiversity in international waters. But agreements are only as strong as their implementation.
बिल्कुल अनुजा, अब हो सकता है कि हमारे श्रोता सोच रहे हों कि इन सब में उनकी या हमारी क्या भूमिका हो सकती है. असल में हमारी भूमिका काफी बड़ी है. यहाँ कुछ काम आसान दिए गए हैं. टिकाऊ स्रोतों से मिली ट्यूना मछली चुने और इको लेबल देखें. इसके अलावा बहुत ज्यादा उपभोग से बचें. अपने सी फूड विकल्पों में संतुलन बनाए रखें. इसके साथ ही जानकारी रखें और जागरूकता फैलाएं और समुद्र संरक्षण की दिशा में काम करने वाली नीतियों और संगठनों का समर्थन करें. आप जो भी चीज खरीदते हैं उससे बाजार को एक संकेत मिलता है.
Absolutely. The story of tuna is a story of both warning and hope, and it reminds us how quickly natural resources can decline, but also how powerful collective action can be. From struggling stocks to a 99% sustainability rate, the journey of tuna shows that change is possible when science, policy, and people come together. So today, on World Tuna Day, let's celebrate progress, but remain vigilant, because the future of tuna is ultimately in our hands.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो अनुजा, सबसे पहले श्रोताओं को ओडिशा ले चलें.
Right, Mukesh, and the census process has already started in Odisha, marking an important step towards a fully digital population survey in India. As part of Census 2027, the first phase, called the House Listing and Housing Census, is now being carried out in all 30 districts of the state. And we have a report on this.
The first phase is taking place from mid-April to mid-May. It focuses on collecting information about households such as housing conditions, basic facilities and ownership details. For the first time, people can fill in their information online through a self-enumeration portal before officials visit their homes. More than 1 lakh personnel, including teachers, have been engaged as enumerators along with over 15,000 supervisors. After the self-enumeration, enumerators using mobile app are visiting homes to verify the information and make sure no household is left out. Director of Census Operation Odisha, Nikhil Pavan Kalyan, has appealed to people to cooperate, assuring that all information collected will remain confidential.
Our census work in the state of Odisha is almost into 11 days into the work. We have completed self-enumeration and now house listing operations in the field are happening. All the enumerators, more than 1 lakh enumerators, are there in the field doing excellent work. And we are hopeful that it will be completed successfully and accurately well within the final day of May 15th. We have another 20 days to go approximately.
With a population of over 4 crore, Odisha has a diverse population, and this census aims to capture accurate and complete data. The second phase of the census, expected in early 2027, will collect detailed population data. For Parikrama, this is Itish Singh Rathore.
And thousands of devotees have gathered in the forested hills of Idukki for the annual Chitra Purnami festival at the historic Mangala Devi temple, creating a deeply spiritual atmosphere along the Kerala-Tamil Nadu border. Located inside the Periyar Tiger Reserve, the ancient shrine, believed to be over 1,000 years old and dedicated to Kannaki, opens its doors to the public once a year on the full moon day of the Chitra month. This year too, thousands of pilgrims from both Keralam and Tamil Nadu made the journey through the forest terrain to seek blessings. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
The Chitira Purnami Festival at Mangaladevi Temple Kumbali was jointly organized by district administrations of Idukki in Kerala and Theni in Tamil Nadu. And the rituals were conducted in both Kerala and Tamil traditions. The Mangaladevi Temple near Kumbali is unique as it opens to devotees only once every year on Chitira Purnami. Located inside the Periyar Tiger Reserve, the temple blends spirituality with a rare forest pilgrimage experience. Believed to be over 1,000 years old and linked to the epic Chilappathikaram, it reflects shared Kerala Tamil traditions. Strict eco-friendly regulations also make the pilgrimage a model of devotion in harmony with nature. Puja ceremonies began early in the morning led by chief priests. Separate sanctums hosted different styles of worship reflecting the shared cultural heritage of the region. The temple complex also features a cave entrance believed to date back to the era of Rajaraja Chola I. Elaborate arrangements were made under the supervision of district administrations from Idukki and Theni. Police, forest, health, fire and rescue, motor vehicle and revenue departments worked together to ensure the safety and smooth movement of pilgrims. Earlier, officials had confirmed that entry to devotees would be allowed from early morning with strict time controls to ensure everyone exits the forest area by today evening. Devotees were instructed to carry food in eco-friendly packing and to avoid any activities that could harm the fragile forest ecosystem. The annual pilgrimage once again highlighted a rare blend of devotion, heritage, and environmental responsibility as thousands experienced the sacred darshan in harmony with the nature. Midhi M. Paluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश. गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे एकला बांध पर 2,26,000 मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण कर एक खूबसूरत इको पार्क का निर्माण किया गया है. ये पार्क अब शहरवासियों के लिए एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बन गया है. 40 एकड़ में बने इस पार्क का उद्घाटन 23 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. उन्होंने कहा कि जहां पहले कूड़े का पहाड़ होता था वहां अब खूबसूरत पार्क है. इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि इस पार्क का निर्माण पर्यावरण के प्रति गोरखपुर वासियों की प्रतिबद्धता दर्शाता है.
इस वेस्ट टू वंडर पार्क के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कचरे के निस्तारण से बना यह पार्क कचरे को कंचन में बदलने का शानदार उदाहरण है. उन्होंने कहा कि नीयत साफ हो तो नियति बदलने में देर नहीं लगती. इस पार्क में कचरे से मोर, शेर, जिराफ और पेड़ पौधों की आकर्षक आकृतियां बनाई गई हैं. पार्क में बच्चों के लिए बनाया गया किड्स जोन भी प्रमुख आकर्षणों में से एक है. इसमें झूले और प्लांट पॉट भी वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं. पार्क के बीचों बीच योग स्थल का निर्माण भी किया गया है जहां लोग सुबह शाम प्रकृति के बीच योग कर सकते हैं. कुल मिलाकर यह इको पार्क शहरवासियों के लिए घूमने फिरने के साथ साथ एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट भी है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता.
And now from Gorakhpur, we take you all to Mumbai, where Dr. Bhau Daji Lad's Museum, one of Mumbai's most iconic buildings and museums, is celebrating its 154th opening day today. Established in 1855, the museum opened its gates to history enthusiasts and the general public on 2nd of May in the year 1872, offering a visual tour of Mumbai's evolution. We have more on this from our Mumbai correspondent.
Located on the premises of Jizamata Udyan in central Mumbai, Dr. Bhau Daji Lad Museum is Maharashtra's oldest and India's third oldest museum. It houses a unique collection that narrates the story of Mumbai and how it evolved into the financial capital of the country. Let's hear more from archaeologist and former curator of Dr. Bhau Daji Lad Museum, Ruta Vaghmare Baptista.
Bombay Presidency did not have museums, and there were major international exhibitions happening for which they required objects from Western India, and that led to a certain group of educated individuals, educated philanthropists, saying that, okay, if we had a museum here, and a 19th century museum movement had started across India. So in fact, in Bhau Daji Lad's speech, he says that the museum should be read like a book. That was the idea behind creating this museum.
Originally named the Victoria and Albert Museum, the museum was renamed on 1st November 1975 in honor of Dr. Bhau Dajilad. Dr. Bhau Dajilad Museum, unlike most museums, is not silent and serious but playful and vibrant, as school children constitute a large number of visitors here. So, the next time you visit Mumbai and Jizamata Udyan, do not forget to peer into the iconic building of Dr. Bhau Dajilad Museum and catch a glimpse of Mumbai's glorious past. For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
And if we talk about the sports news, in IPL cricket, Chennai Super Kings will take on Mumbai Indians at the M.A. Chidambaram Stadium this evening, and the match will begin at 7:30 p.m.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
May the 2nd, 1950, the government of India took over the administration of Chandernagore from France. The city, now known as Chandernagore, forms part of the state of West Bengal as per the Chandernagore Merger Act 1954.
Chandernagore was established as a French colony in 1673 when France obtained permission from Ibrahim Khan, the then Nawab of Bengal, to establish a trading post on the right bank of the river Hooghly. Later, it became a permanent French settlement.
In 1756, war broke out between France and Great Britain, and the British Navy finally captured Chandernagore in 1794. But the city was returned to France in 1816, along with a 3 square miles enclave of surrounding territory. It was governed as part of French India until 1950, under the political control of the Governor General in Puducherry.
On the 8th of June 1948, the government of the French Republic, in agreement with the government of India, declared that it intended to leave to the populations of French establishments in India themselves the right to pronounce their future fate and future status. On the 9th of June 1949, the citizens of Chandernagore voted in favour of the merger of the territory with India. Thus, on the 2nd of May 1950, the government of India took over the administration through the de facto transfer of Chandernagore.
After this, on the 2nd of February 1951, the Treaty of Cession of the Territory of the Free Town of Chandernagore was signed in Paris by the representatives of the President of India and the President of the French Republic. After this, on the 9th of June 1952, Chandernagore was transferred de jure to the Union of India.
We commemorate freedom fighter Kadraka Mangra, who died on the 2nd of May 1945, a resident of Koraput, Odisha. Mangra participated in the Quit India movement in 1942 in response to the nationwide call of Mahatma Gandhi. He was arrested by the British police and detained in Nabarangpur sub jail.
In the jail, he fell severely ill due to the unhygienic living conditions and lack of medical care in the prison. He was shifted to Koraput District Jail and later on admitted to the hospital. Kadraka Mangara died in the hospital on the 2nd of May 1945. We salute the great Indian.
We also remember nationalist Santa Singh, who was martyred on the 2nd of May 1925. A resident of Lahore, Santa Singh participated twice in the Shahidi Jathas to Jaito Gurudwara Gangsar Nabha in 1924-25 against the British order prohibiting all prayer assemblies there.
When the Jatha reached the Gurudwara, Wilson Johnston, the administrator of Nabha, ordered the troops to stop the Jatha and arrest its participants. The British-led troops stopped it and arrested a large number of its members. With others, Santa Singh was also arrested and tortured to death on the 2nd of May 1925 in jail.
We salute the great martyr.
We also remember Indian National Army Lieutenant Kapoor Singh. A resident of Punjab, he participated in the war against the British troops on the Burmese front. He was killed in action on the 2nd of May, 1944. Kapoor Singh was posthumously awarded the medals of Veer Hind and Shatrunash by Netaji Subhash Chandra Bose. We salute this great son of the soil.
और अब हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध पत्रकार और शहीदों की स्मृति में साहित्य प्रकाशन के प्रेरणा स्रोत रहे बनारसीदास चतुर्वेदी को. उनकी गणना अग्रगणी पत्रकारों और साहित्यकारों में की जाती है. हालांकि हिंदी साहित्य के प्रति अनुराग और लेखन की अभिरुचि के लक्षण उनमें पत्रकार बनने से पहले ही दिखाई दे चुके थे. सन 1914 से ही वे प्रवासी भारतीयों की समस्याओं पर लिखने लगे थे. बनारसीदास 12 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे. उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने सन 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया.
And today we also remember on her death anniversary, Padmaja Naidu, who was a prominent Indian freedom fighter, political leader and administrator who played an important role in India's national movement and post-independence public life. She was born on 21st of November 1900 and was the daughter of the famous poet and nationalist leader Sarojini Naidu. Inspired by her mother and Mahatma Gandhi, Padmaja Naidu joined the Indian freedom struggle at a very young age. She passed away on this day in 1975 and is remembered as a fearless freedom fighter, capable administrator and a graceful leader who carried forward the legacy of service, patriotism and women's leadership in modern India.
और अब हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी यशवंत सिंह परमार को. वे हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे और उन्हें हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने और विकास की आधारशिला रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. लगभग तीन दशकों तक कुशल प्रशासक के रूप में जन जन की भावनाओं संवेदनाओं को समझते हुए उन्होंने प्रगति के पथ पर चलते हुए हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए नई दिशाएं पेश की. उन्होंने अपना सारा जीवन प्रदेश की जनता के लिए समर्पित कर दिया. वे गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे.
And today we also pay tribute to Hemchandra Goswami, who was an influential Assamese intellectual renowned as a writer, poet, historian, teacher and linguist who significantly shaped modern Assamese literature and language during the Janaki era. He emerged as one of the Trimurti of early modern Assamese literature alongside Lakshminath Bezbarua and Chandra Kumar Agarwal, contributing to the revival and standardization of Assamese as a distinct literary medium. His multifaceted work bridged traditional Vaishnavite scholarship with colonial era reforms while advocating for Assamese identity against Bengali dominance.
और अब हम याद कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के विश्व के महानतम फिल्मी हस्तियों में शामिल सत्यजीत रे को. उन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. सत्यजीत रे प्रमुख रूप से फिल्मों में निर्देशन के रूप में जाने जाते थे, लेकिन लेखक और साहित्यकार के रूप में भी उन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की. सत्यजीत रे फिल्म निर्माण से संबंधित कई काम खुद करते थे. इनमें निर्देशन, छायांकन, पटकथा, पार्श्व संगीत, कला निर्देशन, संपादन आदि शामिल थे. फिल्मकार के अलावा वो कहानीकार, चित्रकार और फिल्म आलोचक भी थे. सत्यजीत रे कथानक लिखने को निर्देशन का अभिन्न अंग मानते थे. सत्यजीत रे ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया. इनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र, लघु फिल्में शामिल थीं. इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली को कान फिल्मोत्सव में मिले सर्वोत्तम मानवीय प्रलेख पुरस्कार को मिलाकर कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे.
एंड एज यू जस्ट मेंशन मुकेश, शी वाज नॉट ओनली अ फिल्म डायरेक्टर बट आल्सो अ स्क्रीन राइटर, एन ऑथर, अ लिरिसिस्ट, अ मैगजीन एडिटर, एन इलस्ट्रेटर, अ कैलीग्राफर एंड अ कंपोजर. He began composing his own film music in 1961, created iconic songs and themes known for their Bengali cultural roots, sharp satire and melodic simplicity. And of course, who can forget the key songs which come from Gopi Gayan Bagha Bayan, while his background scores are renowned for their emotive impact also.
Dekhuri, Dekhuri, Noyon Mili দেখো রে নয়ন মিলি জগতের বাহার.
और विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत रे को भारत रत्न 1992 में मिला। इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
The iconic film Shatranj Ke Khiladi is based on a short story by the legendary Munshi Premchand. Satyajit Ray masterfully expanded the narrative, blending it with the political turmoil of 1856. In this movie, he directed this movie, and let's hear a dialogue from this picture.
Mirza Sajjad Ali Shah de rahe. Yahi hai safed fauj ke badshah, aur in par lal wazir hamla karne ki taak mein hai. Mir sahab, badshah bachaiye. बादशाह गया तो खेल खत्म।
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।